समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। आज तुलसीदास जयंती है, इनके शब्दों में जीवन की कई उलझनों का हल मिलता है। तो आइए इस महान संत से कम इतनी सी सीख लें कि हम कुछ ऐसे बात करें कि हम अपने जीवन और अपनी दुनिया को मिठास से भर दें। नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हाय सायरा।
Hi Charu, Namaskar Radhav, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama. And Charu, वैसे तो हमारा रोज का शो जो है बड़ा खास होता है, बट आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा खास है क्योंकि बहुत ही महान महान लोगों की आज हस्तियों की जो हम कह सकते हैं they have their birth or death anniversaries or birthdays. So well, 31st July on the calendar reminds us that today is the great, great writer Munshi Premchand's birth anniversary. And of course, Premchand's writings, his pen continues to, you know, inspire so many of us. And sadly, his pen is still relevant. And if you're thinking, why am I saying sadly? Because jin issues pe unhone likha, exploitation of the farmer or patriarchy, that still exists. You know, we are still fighting that. So that's why it's a travesty that we are still, you know, facing those issues that Premchand wrote about. Anyway, we'll talk about Premchand at length. And we have a very special interview lined up for you. Gulzar को हम लोग ने इंटरव्यू किया था आकाशवाणी ने एक्सक्लूसिवली, सो वील ब्रिंग दैट इंटरव्यू, बट ऑल ऑफ दैट इन द लास्ट सेगमेंट व्हेन वील रिमेंबर प्रेमचंद अमंग अदर पर्सनालिटीज। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस चारू।
यस,
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स टोटल आउटले ऑफ 6,520 करोड़ रुपीज फॉर ऑन गोइंग प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। गवर्नमेंट ऑल्सो क्लेयर्स फॉर मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट कवरिंग 13 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 6 स्टेट्स।
राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी किया। मौसम विभाग का आज असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का अनुमान। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
And in cricket, host England won the toss and opted to bowl against India in final test match at Oval Ground in London. And now it's time for our segment Dateline Inter, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. Today, Charu, we have a very important topic in our segment, wetlands and India's leading efforts for their conservation. India's resolution on promoting sustainable lifestyles for the wise use of wetlands received overwhelming support and was adopted at the 15th conference of the contracting parties to the Ramsar Convention on Wetlands being held in Zimbabwe. The theme of the conference, Protecting Wetlands for Our Common Future. The resolution received overwhelming support from 172 Ramsar contracting parties, 6 international organization partners and other observers, and was formally adopted at the plenary session yesterday.
और इस प्रस्ताव को अपनाकर पक्षों ने आद्र भूमि संरक्षण में व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णयों की बहुत ज्यादा जरूरी वाली भूमिका का समर्थन किया और अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार एक गृह समर्थक जीवन शैली की दिशा में काम किया है। तो आद्र भूमि क्या है? देखिए, वो ये वो क्षेत्र हैं जहां जल भूमि को स्थायी रूप से या मौसमी रूप से ढकता है ये, और इन परिस्थितियों के अनुकूल अद्वितीय वनस्पति और पशु जीवन इनकी विशेषता है। ये स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र हैं और प्रकृतिक या मानव निर्मित ये हो सकते हैं। और आर्द्र भूमि को भूमि की सतह पर या उसके निकट जल की उपस्थिति से परिभाषित किया जाता है।
And Charu, wetlands also act as a bridge, we can say, between terrestrial and aquatic ecosystems. Natural or man-made wetlands can be naturally formed, that is, you know, marshes, swamps, they're all created by human activity. The reservoirs and aquaculture ponds as well. Simply stated, wetlands are part of our landscape that are defined by the presence of water. Many wetlands are transitional zones between upland and aquatic ecosystems. Although others are scattered across the landscape in upland depressions that collect water इन zones where groundwater comes to the surface.
देखिए अभी आपने जिसे बताया, लेकिन एक बात कहूंगी, भारत में जो आर्द्रभूमि संरक्षण है एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है और सरकार इसके लिए कई प्रयास कर रही है. देखिए आर्द्रभूमि संरक्षण अधिनियम 2010, राष्ट्रीय अधिभूमि संरक्षण कार्यक्रम और रामसर अभी समय जैसे कानूनी और सरकारी पहलुओं के माध्यम से आर्द्रभूमि को बचाने की कोशिश की जा रही है और साथ ही जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को शामिल करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है. और किसी आर्द्रभूमि में मौजूद पानी की मात्रा में काफी अंतर हो सकता है देखिए, और कुछ आर्द्रभूमियां स्थायी रूप से जलमग्न रहती हैं जबकि अन्य केवल मौसमी रूप से जलमग्न होती हैं. लेकिन अधिकांशतः जलमग्न ना होने की अवधि के दौरान संतृप्त मृदा बरकरार रहती है. फिर भी कुछ आर्द्र भूमियों में शायद ही कभी बाढ़ आती हो, लेकिन संतृप्त मृदा की स्थिति आर्द्र भूमि के अनुकूल पौधों को पनपने और जलीय मृदा विशेषताओं के विकास के लिए पर्याप्त समय तक मौजूद रहती है.
Yes, of course, Charu. And when we talk about India, well, India boasts a wide array of large wetlands, including the Sundarbans in the Ganga-Brahmaputra Delta. That is being the largest, and that's also a UNESCO World Heritage Site. And why are wetlands important, if our listeners must be wondering? Well, wetlands filter pollutants and improve water quality. They also trap pollutants such as phosphorus and heavy metals in the soils, transform nitrogen into a form that's easier for plants to take in, and physically and chemically break down bacteria.
क्या आप भारत में कुछ आर्द्र भूमियों के नाम बता सकते हैं?
मैंने सुंदरबंस का तो नाम लिया ही अभी.
नहीं, इसके अलावा?
इसके अलावा आप बताइए.
ओडिशा में चिल्का झील है और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील शामिल है.
Well, wetlands cover a small portion of the planet nonetheless, but their carbon capturing abilities, they pack a big punch. They can store 50 times more carbon than rainforest, helping to keep the heat-trapping gas that contributes to climate change out of the atmosphere. Wetlands pull leaves, animal waste and other high carbon matter down from the surface of the water.
और ये प्राकृतिक मलबा आर्द्र भूमि में पानी और तलछट के साथ दबकर उन्हें बंद कर देता है. और इसका एक और फायदा ये है कि आर्द्र भूमि तेजी से बढ़ती है और स्थिर रहती है, यानी वायुमंडल से कार्बन सोखने के लिए इनका जीवन काल लंबा होता है.
That's right, Charu. And in fact, coastal wetlands are like mangroves. They protect shorelines from erosion also and storm surges. They also offer opportunities for activities like fishing, bird watching, nature walks, and a wide variety of species live in wetlands. Birds, including ducks, geese, kingfishers, and sandpipers, use wetlands as pit stops during long migrations, providing them with protection and also food.
ऊद बिलाव और यहाँ तक कि बाघ जैसे स्तनधारी जीव भोजन और आश्रय के लिए आर्द्र भूमि पर निर्भर रहते हैं सायरा. और पता है, जाहिर है कि आर्द्र भूमि कई प्रकार की मछलियों का घर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्द्र भूमि कई प्रजातियों का घर है. आइए अपने श्रोताओं को आर्द्र भूमि के लिए खतरों के बारे में बताएं ताकि वो संरक्षण के लिए कदम उठा सकें.
That's right, Charu. Well, a lot of people are exploiting the wetlands also, draining wetlands for agriculture, development or other purposes. And altered rainfall patterns and rising sea levels, they can negatively impact wetlands.
और बढ़ते तापमान और समुद्र के स्तर से तटीय और अंतर्देशीय आर्द्र भूमि को खतरा है.
And as a result, wetlands may lose species and ecological functions as a result. So without wetlands, cities have to spend more money on treating water. Floods are more devastating to nearby communities. Storm surges from hurricanes can penetrate further inland. Animals are displaced or die out. And food supplies are disrupted along with livelihoods.
दुनिया भर में विभिन्न संरक्षण प्रयास किए गए हैं, जैसे आर्द्र भूमि के मूल्य को पहचानते हुए इन मूल्यवान पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा और पुनर्स्थापन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं.
एंड वेल, हम लोग ने अपने इस सेगमेंट में बार बार रामसर साइट्स और रामसर कन्वेंशन की बात की, सो लिटिल ऑन दैट. द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1971 प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स ग्लोबली. इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस अग्रीमेंट. दिस डॉक्यूमेंट एक्सप्लोर्स द रामसर साइट्स इन इंडिया एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ. India now has a total of 91 Ramsar sites.
इस दिशा में एक और मील का पत्थर कल COP15 जिम्बाब्वे में अपनाया गया प्रस्ताव है, जिसमें सभी स्तरों पर आर्द्र भूमि प्रबंधन योजनाओं, कार्यक्रमों और निवेशों में स्थायी जीवन शैली आधारित हस्तक्षेपों को शामिल करने पर विचार करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई का आग्रह किया गया है। प्रस्ताव में सार्वजनिक और निजी सहयोग को बढ़ावा देने, सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने और आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने वाली अनुकूल परिस्थितियां बनाने की भी कोशिश की गई है।
That's right. And if we talk about sustainable lifestyles, well, these are ways of living, social behaviors and choices that A. minimize environmental degradation by conserving resources and reducing waste generation. Also, it enables better quality of life. India has taken various efforts to conserve wetlands. So let's discuss some of them. Apart from recent conservation efforts at Zimbabwe, where India led resolution was adopted, India has been a leader in its conservation. National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems, Amrut 2.0 mission, focus on urban blue-green infrastructure for wetlands. Namami Gange program includes wetland rejuvenation along the Ganga River basin.
मिशन लाइफ एक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए वैश्विक जन आंदोलन है और ये मिशन राष्ट्रीय आकांक्षाओं को समग्र समाज के प्रयासों में बदलने में मदद करता है। ये भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक जन आंदोलन है जो पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हेतु व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। ये इस बात को मान्यता देता है कि भारतीय संस्कृति और जीवंत परंपराएं स्वाभाविक रूप से स्थायी हैं।
And so that brings us to the end of this segment. And jate jate concluding remarks that wetlands are vital ecosystems that provide essential services such as water purification, flood control, carbon storage, and habitat for countless species. Despite their importance, they continue to face threats from pollution, climate change, and human development.
चलिए अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या है विशेष। तो सायरा किस तरफ चलें?
Well, a very interesting story coming in from Rakesh Tole. Well, in a strategic move to scale up Arunachal Pradesh's orchid mission, the state government is seeking international collaboration to position the region as a global orchid hub. Chief Secretary Manish Kumar Gupta held a virtual meeting with Nagesh Singh, India's ambassador to Thailand, to explore partnerships in orchid cultivation and commercialization. A report.
Arunachal Pradesh is exploring international collaboration to strengthen its orchid mission. The state's Chief Secretary Manish Gupta, in a virtual meeting with Nagesh Singh, India's ambassador to Thailand, yesterday has sought the embassy's support in attracting Thai private investment to accessing high-quality planting materials and technical know-how in orchid farming. The state is especially keen on technology transfer in the area of tissue culture. Efforts are also underway to enhance the skills of local farmers, self-help groups, and farmer-producer organizations. The aim is to transform traditional orchid growing into a scientific, commercially viable and sustainable horticultural enterprise. In a social media post, the Chief Secretary said that the embassy's support is being sought to connect with Thai investors and agencies for technology partnerships and capacity building. He said this collaboration can transform orchid cultivation into a sustainable, high-value horticultural enterprise, creating meaningful livelihood opportunities in the state. This proposed collaboration with Thailand has the potential to put Arunachal Pradesh on the global orchid map, linking its rich biodiversity with modern technology and global markets. For Parikrama, this is Rakesh Tole, Akashwani News, Itanagar.
And from the northeast, we now head towards the north to Ladakh. Well, in Ladakh, the ongoing 7-day Akanksha Heart at Auditorium Hall in Kargil is receiving an enthusiastic response from both locals and tourists. So let's hear more from our correspondent.
The event was inaugurated by Executive Councillor for Rural Development, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Engineer Ponsuk Tashi, under the banner of Sampurnata Abhiyan Samman Samaroh. Organized as part of the nationwide Sampurnata Abhiyan, the hut features stalls by self-help groups and artisans from across District Kargil. These stalls showcase a variety of local-made products promoting Prime Minister's Local for Vocal initiative. Chief Planning Officer Kargil Abdul Hadi, while speaking to media, said that the hut is not just a marketplace but a platform to empower women entrepreneurs, build their capacity and connect them with new opportunities. Executive Councillor Punjab Also, Tashi emphasizes the importance of creating sustainable livelihood and ensured continued support from LHDC Kargil to strengthen self-help groups through market linkages and economic schemes. The Akansha Hut will continue till August 2nd and is expected to witness increased participation from buyers, institutions and visitors celebrating local creativity and enterprise in the heart of Himalayas. For Parikrama, this is Anayat Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
और अब चलते हैं खेल मैदान में तो सायरा क्या है खास
Well, in cricket, India were 37 for 1 against host England on day 1 of the final and decisive test of the 5-match Anderson Tendulkar Trophy or Test Series at the Oval Ground in London when reports last came in. Earlier, the host won the toss and opted to bowl. India will be looking to level the series, which they are trailing 2-1. And in business news, benchmark domestic equity indices today ended with modest losses, dragged by sell-off during last half an hour of trade. After a weak start amid tariff woes, the markets recovered during the afternoon trade. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 296 points to close at 81,186, while the National Stock Exchange Nifty 50 dipped 87 points to settle at 24,768. In the global crude oil market, Brent crude was trading almost 0.8% down at $72.66 per barrel.
और अब बात करते हैं हम भारत की स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को किस तरीके से उन्होंने एक दिल में जगह बनाई तो अब याद करते हैं हम उन्हें
आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम
आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी उधम सिंह को याद कर रहे हैं उन्हें जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या के लिए आज ही के दिन 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी उधम सिंह भगत सिंह से बहुत ज्यादा प्रेरित थे वे उन्हें अपना गुरु और श्रेष्ठ मित्र मानते थे वे भगत सिंह का फोटो अपने बटुए में रखते थे उधम सिंह पर भगत सिंह का प्रभाव उस पत्र से जाना जा सकता है जो उन्होंने मार्च 1940 में लिखा था पत्र में उन्होंने लिखा
आज 10 बरस हो गए जब मेरे दोस्त भगत सिंह मुझे छोड़ गए थे और मुझे यकीन है कि मौत के बाद जब मैं उन्हें देखूंगा तो वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे 23 तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी मुझे लगता है कि मुझे भी वो उसी तारीख को फांसी देंगे
भगत सिंह की तरह उधम सिंह ने भी मुकदमे में सुनवाई को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने के मंच के रूप में उपयोग किया मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने कहा
हम ब्रिटिश हुकूमत से पीड़ित हैं वो बेहिचक भारतीय विद्यार्थियों पर गोलीबारी का हुक्म देते हैं भारत की तुलना में ब्रिटेन में मेरे अंग्रेज दोस्तों की संख्या कहीं ज्यादा है मैं ब्रिटेन की जनता का विरोधी नहीं हूँ मुझे इंग्लैंड के कामगारों से हमदर्दी है लेकिन मैं घृणित ब्रिटिश सरकार का विरोधी हूँ और आप लोग भी वही पीड़ा झेल रहे हैं जो हम लोग झेलते हैं
उधम सिंह अपने मित्र भगत सिंह की तरह ही अदालत में अपना भाषण समाप्त करते समय क्रांति के समर्थन और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में नारे लगाते रहे
शहीद आजम उधम सिंह को पेंटोविले जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत लाई गईं। इंदिरा गांधी शंकर दयाल शर्मा और जैल सिंह ने अस्थि कलश प्राप्त किया 2 अगस्त 1974 को उधम सिंह की अस्थियां 7 भागों में विभाजित की गईं, जिनमें से 5 भाग हरिद्वार करतारपुर साहिब रोजा शरीफ सुनाम और जलियांवाला बाग ले जाए गए शेष 2 भाग सुनाम में शहीद उधम सिंह कला महाविद्यालय में रखे गए आकाशवाणी की ओर से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह को शत शत नमन
आज हम स्वतंत्रता सेनानी धीरन तीर्थगिरी गौंडर को भी याद कर रहे हैं जो धीरन चिन्नामलाई के नाम से लोकप्रिय थे वे 31 जुलाई 1805 को वीरगति को प्राप्त हुए गौंडर समुदाय के चिन्नामलाई पलियाकर युद्ध के कमांडरों में शामिल थे 1801-1802 में उन्होंने पोलिगर युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
धीरन चिन्नामलाई का जन्म तमिलनाडु के ईरोड के निकट मेलपलयम में 17 अप्रैल 1756 को हुआ था उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध में टीपू सुल्तान की मदद की और चित्तेश्वरम माजा हवल्ली और श्री रंगपट्टनम की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
टीपू की मृत्यु के पश्चात चिन्नामलाई कोंगु नाडु के ओडानिलई में बस गए और वहाँ एक किले का निर्माण कराया। उन्होंने 1801 में कावेरी, 1802 में ओडानिलई और 1804 में आर्चालूर की लड़ाई में अंग्रेजों को हराया।
तोप के हमले से बचने के लिए चिन्नामलाई ने किला छोड़ दिया और पलानी के करुमलई क्षेत्र में रहकर गुरिल्ला युद्ध करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और 31 जुलाई 1805 को संकागिरी किले में फांसी दे दी। महान स्वाधीनता सेनानी को शत शत नमन।
और अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए। मशहूर गणितज्ञ, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन 1907 को गोवा में हुआ था और उन्होंने कई साल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। गणित के क्षेत्र में डीडी कोसाम्बी के योगदान की तारीफ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत से विद्वानों ने की, क्योंकि कोसाम्बी किताबी रिसर्च में यकीन नहीं रखते थे। उनका मकसद होता था उनकी जानकारी से जनता को का भला हो। कोसाम्बी ने बिना सोचे विचारे कहीं पर भी बांध बनाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सांख्यिकी की बुनियाद पर बांध बनाने की वकालत की और इसी तरह मुंबई में मॉनसून आने से पहले मौसमी बीमारियों पर उनकी रिसर्च से हर साल करीब 500 लोगों की जान बचाई जा सकी। डीडी कोसाम्बी ने परमाणु ऊर्जा में निवेश का विरोध किया। वो सूरज की किरणों से बिजली बनाने का विकल्प अपनाने की जोर शोर से वकालत करते थे। कोसाम्बी ने संस्कृत, पाली और प्राकृत में महारत हासिल की और सिक्कों को लेकर नए नजरिए की मदद से प्राचीन भारत को लेकर हमारी समझ को बेहतर किया।
Today, as I had mentioned at the beginning of the show, we are remembering Munshi Premchand. Yes, the Upanyas Samrat or novel emperor, whose era spanned from 1880 to 1936. This period is also of great importance in the history of India, when India's freedom struggle passed through new stages in this era. Premchand's real name was Dhanpat Rai Srivastava. He was a successful writer, patriotic citizen, skilled orator, responsible editor, and a sensitive writer. In the first half of the 20th century, when there were no technical facilities to work in Hindi, and there was no other writer except him himself who could do so much work, he wrote about 1.5 dozen novels like Seva Sadan, Prem Shram, Rangbhumi, Nirmala, Gaban, Karmbhumi, Godan, among others, and more than 300 short stories like Kafan, Poos Ki Raat, Panch Parmeshwar, Bade Ghar Ki Beti, Old Budi Kaki, and Do Bailon Ki Katha, jise Story of the Bullocks kaha jata hai. And let's listen to a very special interview that we have, because aapko yaad hoga Charu ke Doordarshan ke liye bahut pehle jo hai Gulzar ne jo hai serials banaye the. They were screenplays actually, and they were from based on stories of Premchand. So Gulzar himself is a great fan of Premchand, and I think let's listen to that interview first.
Bilkul
Gulzar sahab, ऐसा प्रेमचंद की तहरीर में ऐसा कौन सा पहलू था जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासर किया?
मुंशी प्रेमचंद के काम, उसी वजह ये है कि हम शहरों में बसने के बाद अपने देहातों को भूल गए हैं। एक सदी गुजरी, तकरीबन 100 साल होने को आए जब वो लिख रहे थे, और जो कहानियां उन्होंने देहात की लिखी उसमें क्या कोई तब्दीली आई है, और अगर आई है तो बेहतरी के लिए आई है या खराबी के लिए आई है? तो आई थिंक ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलिवेंट वक्त के साथ साथ। उन्होंने जिस डाउन ट्रॉडन पीपल, वो जो पिसे हुए लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, जिनके बारे में लिखा, तो मुंशी प्रेमचंद 100 साल के बाद भी उतना ही रेलिवेंट है। और इससे बड़ी चीज क्या इम्प्रेस करेगी आप?
सर, अगर उनकी तहरीर की बात करें तो आपने अपनी किताब में भी लिखा है गंगा जमनी तहजीब और हिंदुस्तानी जबां के नाम। तो ये जो हिंदुस्तानी जबां है हमारी, आज मौजूदा हालात देख रहे हैं जो खासतौर से हमारी नस्ल है, तो एक जबानों की खिचड़ी सी बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रेमचंद की जबां को आज की नस्ल की जबां के हिसाब से ढालना जरूरी है, जैसे ओथेलो का ओमकारा बनना, या फिर आज की नस्ल को प्रेमचंद की जबां से वाकिफ कराना जरूरी है?
नहीं, जबान तो बदलेगी, जबान तो बदलनी चाहिए। कोई भी जबान जो जिंदा है वो वक्त के साथ बदलेगी, और उसे बदलना है। स्टैग्नेंट हो जाए जो जबान, वो डेड होने लगती है, डिके होने लगती है ना, वो सड़ने लगती है या आहिस्ता आहिस्ता अधमरी हो जाएगी, फिर बिल्कुल मर जाएगी। और जहाँ जबान बदल ना रही हो, तरक्की ना कर रही हो, तो वहां का कल्चर भी मरने लगता है। तो जबान का बदलना तो जायज है और बड़ी अच्छी बात है। आजकल जो जबान बोली जा रही है जिसका जिक्र कर रही हैं वो सिर्फ एक अर्बन फेज है और वो बदकिस्मती से हमारी फिल्में भी अर्बन बन रही हैं इसलिए वो जबान खराब सुनाई दे रही है। जरा सा बड़े शहरों से बाहर निकल के जाइए मेट्रोपोलिस से और सुनिए जबान आवाम की, कितने खूबसूरत हिंदी बोलते हैं और खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, है ना। तो मेट्रोपोलिस शहरों की जबान तो हमारी वो है। अगर आप कहें कि हमारी जबान आज जो है वो खराब हो रही, हमारी जबान कौन सी खराब हो रही है? मेट्रोपोलिस सिटीज की, जिनका देहात से ताल्लुक ही नहीं है, जिन्हें अपनी जबान का ताल्लुक नहीं है। वरना आम आदमी तो बड़ी खूबसूरत जबान बोलता है, पढ़ा लिखा नहीं अच्छी जबान बोल रहा।
तो आपने एक फॉलो अप क्वेश्चन मेरे ट्रिगर किया कि जैसे मसलन आज भी माली हमारे बाप दादा अम्मा ये सब कहते हैं कि भाई दस्तपना है, लेकिन प्रेमचंद यूज करते हैं चिमटा। आज मेट्रोपोलिस में जैसे आप कहते हैं तो लोग कहते हैं पकड़। बट क्या ये एवोल्यूशन है या एवोल्यूशन के साथ साथ डी जनरेशन भी आ रहा है?
एवोल्यूशन तो है, इवॉल्वमेंट तो है, लेकिन जो एवोल्यूशन है वो शहरों तक पहुंचा नहीं है। और शहर की जबान के जो हिस्से के आवाम के लिए जाने चाहिए उसमें वक्त लगेगा, लेकिन वो हिंदुस्तानी जबान अपनी जगह खुद बना लेगी।
एक आखिरी सवाल है मेरा कि एज ए मुसन्निफ तहरीर जितनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब आपकी नज़में हम पढ़ते तो हैं, उसके अलावा जब सुनते हैं जो आप नरेट करते हैं तो उतना ही आप तवज्जो देते हैं तकरीर को भी, तो क्या एक मुसन्निफ के लिए बहुत जरूरी है तहरीर के साथ उसकी तकरीर पे भी उतनी ही ग्रिप, उतनी ही पकड़ रखना?
ये तो स्कूलों का काम है। स्कूलों को जो जबान आप लिखते हैं वो बोलनी चाहिए, जो बोलते हैं वो लिखिए। तो लिखने और बोलने का ताल्लुक ना हो ये तो किसी जबान में नहीं सुना हमने।
अपने उपनाम जेके राउलिंग से प्रसिद्ध हैरी पॉटर की ब्रिटिश लेखिका और समाजसेवी जो एन राउलिंग का जन्म आज ही के दिन 1965 में हुआ था और 1997 में 2007 तक प्रकाशित 7 खंडों वाली काल्पनिक श्रृंखला हैरी पॉटर की 60 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं और 84 भाषाओं में इनका अनुवाद हो चुका है। और हैरी पॉटर एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जादूगरों के एक स्कूल हॉगवर्ट्स में जाता है और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से लड़ता है। द कैजुअल वैकेंसी वेस्क्यू के लिए राउलिंग का पहला उपन्यास था। राउलिंग का मानना है कि, और मैं उनकी बात का अनुवाद करके आपको सुना रही हूं, कि राउलिंग कहती हैं कि हमारी असलियत हमारी योग्यता से जाहिर नहीं होती बल्कि हमारे फैसलों से होती है। उनका संघर्ष प्रेरणा देता है कि आप अगर लगन से अपने मन की सुनते हुए कोशिश करें तो आखिरकार आपको जीत जरूर मिलेगी।
Today we are also remembering the great, great singer of Indian film industry, मोहम्मद रफ़ी। यस, मोहम्मद रफ़ी को तो अगर उनके बारे में कुछ बताएं तो वो तो कहते हैं ना ये सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है।
बिल्कुल।
सो वेल, रफ़ी वी ऑल नो हैज़ बीन अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग सिंगर टू ऑल ऑफ अस एंड ही हैज़ गिवन सम वेरी मेमोरेबल सॉन्ग्स टू दिस ब्यूटिफुल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और उनके बारे में बात तो करेंगे ही क्योंकि 25,000 गाने गाए हैं उन्होंने, उससे भी ज़्यादा मे भी। तो क्यों ना पहले जो है लिसनर्स को उनकी जो है कुछ गानों की जी
वो सुनाए। हाँ, लेकिन बीच में एक बात कहूंगी। एक बार ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में KL सहगल गाने आए हुए थे और पद बिजली गुल होने पर सहगल ने गाने से मना कर दिया और भीड़ को शांत करने के लिए रफी को पहली बार लोगों के सामने गाने का मौका मिला और सुनने वालों में मौजूद संगीतकार श्याम सुंदर गाने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रफी साहब को गाने का न्योता दिया। तो ये उनकी एक तरीके से पहला कदम था।
ये लगता है कि जहां मिल गया कि जहां मिल गया।
ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ।
ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले।
आज का परिक्रमा कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी सायरा को। नमस्कार।
नमस्कार।